नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्रोग्राम अस्तित्व में। हम सभी जानते हैं कि ये जमाना है पार का, शक्ति का। बात करते हैं विभिन्न प्रकार की शक्तियों की। हम सभी जानते हैं पैसे की पार को, पैसे की ताकत, नाम की ताकत, शोहरत की ताकत, फिजिकल पार। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये सब तो बाह्य शक्तियां हैं। एक सबसे बड़ी शक्ति जो हम सबके अंदर मौजूद है वो है आत्मशक्ति, जो कि कुछ सुप्त है। जरूरत है उसे जानने की, उसे पहचानने की और जागृत करने की, ताकि उस सबसे बड़ी ताकत को हम सब महसूस कर सकें। आत्मशक्ति को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए अध्यात्म का एक बहुत बड़ा योगदान है। अध्यात्म किस तरह से हमारी शक्ति को जागृत करेगा, अध्यात्म हमें कौन सी चरम सीमा तक ले जाएगा, इस सभी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश पटेल एक वर्ल्ड रिनाउंड साइकोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर गिरीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
नमस्कार
डॉक्टर गिरीश। हम सभी कहते हैं कि एक दिव्य चेतना हमारे सबके भीतर मौजूद है। उस दिव्यता की अनुभूति हम अपने अंदर कैसे करें, उस अनुभूति को कैसे महसूस करें, कैसे एंजॉय करें?
वास्तव में क्या करना चाहिए कि दिव्यता की हम अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा मन पांच तत्वों से जुटा है, और जब तक मन पांच तत्वों से जुटा है कि जिसमें वह अनुभूति की क्षमता ही नहीं है। उदाहरण के रूप में हम अग्नि के सामने खड़े रहे और ये अपेक्षा रखे कि मुझे शीतलता मिले तो असंभव है, क्योंकि अग्नि में वह शक्ति ही नहीं। तो ऐसे इन पांच तत्वों में भी दिव्यता की अनुभूति कराने की क्षमता ही नहीं है। इसलिए दिव्यता की सचमुच अनुभूति करनी हो तो इन पांच तत्वों से ऊपर उठना होगा, इन पांच तत्वों से न्यारा होना होगा। जितना जितना हम उससे ऊपर उठेंगे, न्यारे होंगे, नेचुरली ही दिव्यता का अनुभव करते जाएंगे, क्योंकि दिव्यता का एक अखूट स्रोत हमारे में समाया हुआ है। सिर्फ उस डिटैचमेंट की आवश्यकता है।
इस पंच तत्वों से, पांच तत्वों से उपराम कैसे हुआ जाए, किस जरिए से हम इससे ऊपर उठ सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं?
जिस जरिए से हम इससे जुटे हैं उसी जरिए से इससे उपराम उठना होगा। कैसे जुटे हैं? चिंतन से जुटे हैं, विचारों से हम जुटे हुए हैं
जी।
तो विचारों से ही उससे हमें उपराम होना होगा, चिंतन के जरिए उससे हमें उपराम होना होगा
जी।
अंडरस्टैंडिंग के जरिए उससे उपराम होना होगा।
हम चिंतन की बात करते हैं डॉक्टर गिरीश, चिंतन से क्या मतलब है? चिंतन किस तरह का चिंतन होता है, किस तरह का चिंतन करना चाहिए, चिंतन क्या है?
अच्छा, चिंतन अर्थात कि भी जो हमारे विचार जो हम गहराई से करते हैं
जी,
सोच समझ करके करते हैं, जिन विचारों को हम दिशा देते हैं उसे चिंतन कहेंगे। और इस प्रकार का चिंतन कि हम जानते हैं, हमने जन्म से कुछ बातें सुनी है, परंतु उसके बारे में कभी गहराई से विचार नहीं किया कि भी ये शरीर वह नाशवान है, यह शरीर टेम्पररी है
जी।
तो यह बात अगर समझ में आए कि भी जो हमें ये शरीर दिखाई दे रहा है वह टेम्पररी है, परंतु मैं आत्मा, मैं वह चेतन शक्ति, मैं अविनाशी हूँ,
बिल्कुल
मैं दिव्य हूँ। यह शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है
जी।
आत्मा व आध्यात्मिक तत्व की बनी है, दिव्य प्रकाश की बनी हुई है। तो इस बात का चिंतन, और भी कई तरीके हो सकते हैं, ये अनुभव करना कि यह शरीर एक मोटर कार जैसा है और मैं आत्मा उसकी ड्राइवर हूँ। जैसे ड्राइवर को सदैव यह जागृति होती है कि मैं कार से भिन्न हूँ, परंतु हम आत्माओं ने उस जागृति को गंवा दिया है, अपने आप को शरीर मान के ही कर्म कर रहे हैं। तो दोबारा यह चिंतन हो कि कैसे मैं इस शरीर को चलाने वाली दिव्य चेतना हूँ। इस शरीर को हमें कंप्यूटर मैन भी मान सकते हैं, रोबोट भी मान सकते हैं। रोबोट कैसे काम करता है, उसको जो प्रोग्राम दिया गया है उस प्रोग्राम के अनुसार ही रोबोट काम करता है। तो आत्मा वह प्रोग्राम देने वाली है, यह चिंतन भी हो, इस प्रकार की जागृति हो तो हम आत्म उन्नति कर सकते हैं।
चिंतन कितने प्रकार का होता है?
अच्छा, अगर हम सोचे कि चिंतन के कितने प्रकार,
बिल्कुल,
तो हमारे शास्त्रों में भी इसको अलग अलग लेवल्स भी बताए गए
जी।
कि आत्मचिंतन वो उत्तम है, कहा माया का चिंतन या धन का और सांसारिक चिंतन वह मध्यम है, काम विकार का चिंतन कहते कनिष्ठ है, और परचिंतन को अधम कहा गया कि सबसे इन्फीरियर,
लोएस्ट नहीं चाहिए,
सबसे लोएस्ट है वह परचिंतन है। तो सचमुच परचिंतन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सबसे ज्यादा आत्मा का चिंतन करें।
कुछ लोगों को अपने जीवन में, अपनी लाइफ में संतुष्टि का अनुभव नहीं होता, क्या इसका क्या कारण हो सकता है, इसका क्या रीजन रहता है?
वास्तव में मैं समझता हूँ कि वह गुमराह हुए हैं
जी,
या तो कंफ्यूज भी हुए हैं। एक सीआर की कहानी याद आती है कि वो बहुत प्यासा था तो पानी को ढूंढ रहा था, तो उसको पानी तो मिल गया लेकिन पानी में एक फल भी दिखाई दिया, वृक्ष का फल पानी में दिखाई देने लगा
जी।
तो उसे लगा कि ये फल भी मैं खा लूं, तो पानी में हाथ डाल करके उस फल को खाने गया, तो पानी को ही पूरा गंदा कर दिया, न तो फल मिला न प्यास बुझी। तो हमारी भी आज अवस्था इसी ही है कि हमें सब कुछ जो चाहिए वो मिल सकता है, उसकी प्यास बुझ सकती थी, बड़ा सरल था, लेकिन ज्यादा लोभ करने गया,
उसे छोड़ दूसरे का लालच।
हाँ, तो हम भी आज ऐसा ही कर रहे हैं और कई चीजों की लालच में इतने फंसे हैं कि कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा।
बिल्कुल, आध्यात्मिक उन्नति तो हम सभी करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन बहुत से आकर्षण हैं, दूसरी बातें हैं, सांसारिक विषय विकार हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
मैं समझता हूँ कि हम पुरुषार्थ सही नहीं कर रहे हैं, भले कहने के लिए कहते हैं कि भी हमें उन्नति करनी है, पर वास्तव में जो पुरुषार्थ करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। एक संत थे, उनके भी एक शिष्य ने आके ऐसा ही प्रश्न पूछा कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो
नहीं
रही है
होती।
तो उन्होंने कहा ठीक है, समय आने पर तुझे जवाब दूंगा। तो दूसरे दिन नदी किनारे गए, नदी में नहाने के लिए गए, नदी में नहा रहे थे तो उसको सर पकड़ के अंदर दबा दिया, इतना दबा के, एक मिनट डेढ़ मिनट तक दबा के रहा, उसने बहुत कोशिश की बाहर निकलने के लिए, दबा के रखा, फिर एक मिनट के बाद वो बाहर आया। उसने कहा क्या कर दिया गुरुजी आपने, अभी तो मैं मर जाता। तो उसको पूछा कि भी इतना समय तू जब पानी में था कोई विचार आया? तो कहा नहीं, और कोई विचार नहीं आया, बस बाहर निकलने का है, और कोई विचार नहीं आया। तो कहा बस यही कर, तू परमात्मा को प्राप्त करना है, बस बस ऐसे ही सोचेगा कि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हम अगर आध्यात्मिक रूप से यह सोचे कि मुझे उसी एक को प्राप्त करना है,
एकाग्रता के साथ,
एकाग्रता या तो परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की अनुभूति, वही मेरा एक परम लक्ष्य है और कुछ भी नहीं है, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल,
जैसे उसको जब पानी के अंदर था तो बाहर निकलने के सिवा कोई विचार ही नहीं था
जी।
तो इसे परमात्मा की प्राप्ति के सिवा कोई विचार ही न हो तो देखो आपको यूं एक दिन में परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी, परंतु उतनी लगन हमारी नहीं है, और वह लगन नहीं होने के कारण मन में और विचार आते हैं, एकाग्रता भंग हो जाती है।
बिल्कुल डॉक्टर गिरीश, हमारे इस प्रोग्राम को बहुत से लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग हमारी विचारों को सुनते हैं, हमें बहुत सी प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। उनमें से बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो सब कुछ करते हैं, उन्होंने जीवन में पुरुषार्थ किया है, उन्होंने नाम पैसा शोहरत सब हासिल किया है, वो अध्यात्म से जुड़े हैं, उनके शब्दों में वो पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, फिर भी जीवन में कहीं एक खोखलापन है, कुछ कुछ मिसिंग वो महसूस करते हैं, वो खालीपन क्या है, ऐसा क्यों है?
इसका सिंपल अर्थ है कि ठीक से रास्ते पे नहीं चल रहे। मुझे अगर यहाँ पर स्टूडियो में आना है
जी।
और मैं काफी यहाँ वहाँ जा रहा हूँ और मुझे स्टूडियो मिल ही नहीं रहा है, तो अंत में क्या सोचूंगा कि भी एड्रेस गलत है,
गलत था,
या तो मैं रास्ता भूल गया हूँ
जी,
इतने कोशिश कर रहा हूँ वहां नहीं पहुंच रहा हूँ, तो बस यही बात है कि आज लोग सचमुच रास्ते को ही भूल गए। बस यही अगर सोच ले कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम मंजिल पर नहीं पहुंच रहे, अंदर में जो फुल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, एक फुलफिलमेंट की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, उसका अर्थ है कि हम रास्ता भूल गए हैं। फिर से हमें सही रास्ते पर आना पड़ेगा। बस इतना भी हम ठीक से सोचे और उस पर चिंतन करें, हाँ, उस रास्ते को ढूंढने का पुरुषार्थ करे, सत्य की खोज करे, तो वह बहुत ही जल्दी मिल सकता है, और संपूर्ण इनर सेटिस्फेक्शन एक टोटल कंटेंटमेंट की हमें अनुभूति हो सकती है।
बिल्कुल, जिस इनर सेटिस्फेक्शन को वो ढूंढते हैं दान धर्म के साथ, पोस्ट पोजीशन के साथ, उन्हें लगता है सब कुछ अचीव करने के बाद भी कुछ खाली क्यों है, वो शायद उनका दान धर्म वाला रास्ता या ये कहिए कि परमात्मा तक पहुंचने का जरिया थोड़ा गलत है। डॉक्टर गिरीश, आध्यात्मिकता हमारे जीवन में क्या करती है, क्या निखार लाती है, क्या बदलाव लाती है?
वास्तव में आध्यात्मिकता क्या करती है, जैसे कि आध्यात्मिकता फिलोसॉफी नहीं है, आध्यात्मिकता कोई डिस्कशन नहीं है, आध्यात्मिकता कोई दिखावा भी नहीं है। आध्यात्मिकता क्या है, जैसे अंधे व्यक्ति को अगर आप आंखें दे दो तो उसे रोशनी मिल जाती है, सब कुछ देखे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। ऐसे ही आध्यात्मिकता से भी हमें ज्ञान की रोशनी मिलती है, और ज्ञान की रोशनी मिलती है तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। फिर जैसे पहले के प्रश्न में भी आपने पूछा था, वह कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा, कि आपको क्लियर देखने लगेगा कि भी क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं क्या उचित है क्या अनुचित है
जी।
तो आपका एक संकल्प भी ऐसी दिशा में नहीं जाएगा कि जहां पर एनर्जी वेस्ट होती हो, जहां इनर कंटेंटमेंट की अनुभूति नहीं होती हो
जी। डॉक्टर गिरीश, कर्म करते करते आध्यात्मिकता कैसे की जा सकती है, कर्म के साथ अध्यात्म कैसे जुड़ेगा और किस तरह से ये आपको अपने परमात्मा से मिलाएगा?
वास्तव में आध्यात्मिकता को कर्म के साथ ही अपनाना है
जी,
कर्म का संन्यास नहीं करना है, नहीं तो सच में सच्चे अर्थ में आध्यात्मिक जीवन नहीं बन सकता। परंतु क्या करना होगा कि कर्म करते करते वो कर्तापन का त्याग करो,
मैं
कर रहा हूँ, सोचो कि मैं ये सब बता रहा हूँ, तो वह उसमें मैंपन आएगा, अहंकार आएगा
जी।
परंतु यह भाव हो कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं को एक परम चेतना के लिए सिर्फ माध्यम हूँ और वो परम चेतना मेरे द्वारा करवा रही है। जैसे हम जब माइक में बोलते हैं तो माइक तो सिर्फ एक माध्यम है,
बिल्कुल
बोलने वाला व्यक्ति बोल रहा है
जी।
तो ऐसे ही वह भाव हो। दूसरा, जो कर्म का फल है उसके साथ भी आसक्ति न हो। जब हम अच्छा कर्म करते हैं ऑटोमेटिक फल मिलना है
जी।
अगर उसके साथ आपका मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो भी हम कर्म करते करते भी आध्यात्मिकता की चरम सीमा पर पहुंच सकते हैं।
बिल्कुल, फल की इच्छा त्याग दो। सिर्फ अपना कर्म करो, पुरुषार्थ करो,
अच्छे से अच्छा करो, वो ऑटोमेटिक
जी।
नो, कहा गया है कि भी लाइफ इज अ इको, जो आप करते हैं वो आपको मिलना ही मिलना है।
बिल्कुल बिल्कुल।
और ये कर्तापन को खत्म करेंगे तो अहंकार खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुषार्थ करते है उसे वो उन्नति भी मिलती है, और सफिशियंट धन की जो हमें आवश्यकता है वह तो हमें मिल ही जाता है, नहीं अदरवाइज देयर इज नो एंड टू इट।
बिल्कुल बिल्कुल।
जब हम फिजिकल एस्पेक्ट को सोचते हैं तो सब कुछ मिल जाए फिर भी ये लगता है कि अभी भी मेरे में कमी रहेगी,
कुछ कमी है। शायद आध्यात्मिक उन्नति होने के कारण एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है,
जो बहुत बड़ी बात है,
जिसके कारण आपने जो भी अचीव किया है आपके पुरुषार्थ में कमी नहीं आती और उस अचीवमेंट से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है।
बिल्कुल, और इंथुजियाज्म भी बना रहता है,
पूरा जोश बना रहता है,
स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
बिल्कुल,
तो ये सब जो प्राप्तियां है वो बहुत बड़ी प्राप्तियां हैं।
बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही रास्ता चुना है। एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर गिरीश, कि अध्यात्म कहीं हमारे विकास में कहीं कोई छोटी मोटी अड़चन तो नहीं डालता, अध्यात्म का स्व विकास में कोई बाधा उत्पन्न तो नहीं करता?
नहीं, बिल्कुल नहीं करता। वास्तव में अध्यात्म कैसा है, अग्नि जैसा है,
अग्नि जैसा।
हाँ, अग्नि में आप रोटी डालो तो भी वो प्रकाशित हो जाएगी, उसमें कागज डालो तो भी वो प्रकाश का रूप ले लेगा, जो भी डालो, घी डालो वह प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे सच पूछो तो अध्यात्म में भी आप जो भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं अल्टीमेटली ज्ञान का प्रकाश होगा, इनलाइटनमेंट मिलेगा, और जो इनलाइटनमेंट हमें सारे जीवन में जो हम हासिल करना चाहते हैं उसमें भी मदद करेगा और अल्टीमेट तक गोल तक पहुंचाने में भी मदद करेगा। तो वास्तव में ज्ञान का प्रकाश है कि जिसमें और कोई भी हानि या तो और कोई ऐसी चीज की जिससे हमें अल्टीमेटली लगे कि भी मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया, ऐसा कभी नहीं होता,
कभी नहीं होता। बल्कि एक और तसल्ली मिलती है कि किसी एक लेवल तक परमात्मा के पास शायद हम पहुंच जाएंगे।
और पहुंचता ही है, हम अगर सही रास्ते से पुरुषार्थ करें उसके करीब जरूर पहुंचते हैं
जी। इन सभी बातों को हम अपनाना चाहते हैं, अध्यात्म को दिल से अपनाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि अपने में उस दिव्य चेतना को अनुभव करें जो सब जगह है, सब में है। इसके लिए क्या करना चाहिए एक कॉमन मैन के लिए? जनरली ये सबकी क्यूरियोसिटी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे कैसे सबको मैं फॉलो कर सकती हूँ, कैसे अपना सकती हूँ।
सबसे पहले तो मैं समझता हूँ क्या करना चाहिए कि ये सब जो बातें हमने चर्चा की है उसके आधार से ये भी स्पष्ट हुआ होगा कि सत्य को खोजना चाहिए। एक अंदर में ये जिज्ञासा व्यक्ति को आ जाए कि मुझे सत्य को खोजना है
जी।
तब वो सत्य तक जरूर पहुंचता है। उसका एक बहुत ही अच्छा रास्ता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय में। जो भी मैंने सारी बातें बताई आपको मेरी अपनी नहीं है, और उसको मैंने साइकोलॉजी के साथ जोड़ने की कोशिश की है
जी।
परंतु उसका एक फाउंडेशन कोर्स होता है,
फाउंडेशन कोर्स,
हाँ, 7 lessons होते हैं इसके कि जो 7 lessons में सारा फाउंडेशन जो है ज्ञान का, मेडिटेशन के अभ्यास का, वह स्पष्ट किया जाता है।
ओके।
तो मैं समझता हूँ आपके लिए भी और सभी के लिए जिनको भी ये जिज्ञासा है, ब्रह्मा कुमारी इसके सभी सेवा केंद्र पर फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है, वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कि वो फाउंडेशन कोर्स किया जाए तो हम सत्य को सचमुच ढूंढ पाते हैं।
बिल्कुल।
और वो डेफिनेट है कि जो भी आप पुरुषार्थ कर रहे हैं वो ज्ञान की कोर्स की बातें उसमें ऐड करेगी, आपको और आगे बढ़ाने में मदद करेगी।
जी डॉक्टर गिरीश, आपने बताया ये फाउंडेशन कोर्स 7 days का है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल इंस्टीट्यूशंस जिस तरह के भी कोर्सेज चलाते हैं तो वो सब पैसा लेते हैं, कुछ ना कुछ फीस रहती है। आप लोग कोई फीस नहीं लेते? इस संस्थान में कोई फीस चार्ज नहीं की जाती?
तो इसलिए इसके पीछे भी एक राज है। दादी प्रकाशमणि जी हमेशा कहते हैं कि भी ज्ञान है वह तो परमात्मा की देन है, ज्ञान कोई हमारा नहीं है
जी।
और जब ज्ञान परमात्मा की देन है तो ज्ञान के ऊपर कीमत लिखी नहीं होनी चाहिए। जैसे और कोई हम चीज वस्तु खरीदने जाते तो उसके ऊपर प्राइस टैग होती है कि भी ये चीज 500 रुपये की, 1000 रुपये की है, तो ऐसे ज्ञान के ऊपर प्राइस टैग नहीं होनी चाहिए। एक तो यह कारण है, और दूसरा यह कारण है कि भी ज्ञान सभी तक पहुंचना चाहिए, एक गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी पहुंचना चाहिए।
बिल्कुल।
कई बार जो लोग फीस लेते हैं वो ये भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जब फीस लेते हैं तब उसकी वैल्यू होती है। हमें भी कहीं कहते हैं कि भी आप लोग फ्री करते हैं तो लोगों को वैल्यू नहीं है, अब फीस लेने लगो उसकी वैल्यू बढ़ेगी।
अच्छा।
चलो ये बात ठीक भी हो सकती है कि भी फीस लेने पर उसकी वैल्यू बढ़ती है, परंतु तब एक मामूली आदमी उसको नई जीवन में अपना पाएगा कि जिसको शायद सबसे ज्यादा जरूरत है।
जरूरत है।
बंबई में मैं देखता हूँ कि भी जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनको शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। मिडिल क्लास तो कैसे भी कुछ ना कुछ कर रहा है
जी।
तो अगर थोड़ा भी हम ये भी कहे कि भाई ये फाउंडेशन कोर्स के 500 रुपीज है तो वह लोग तो नहीं कर पाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो उनके तक आपका ज्ञान है वह नहीं पहुंचा
जी।
तो इसीलिए इसको फ्री में रखा गया
तो,
और हमने कहीं देखा है। मैं भी जब शुरू में आया आज से 30 साल पहले जब मैंने रेगुलर आना शुरू किया
जी।
तो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी बहनें क्या कर रही है, क्योंकि ये निर्णय करना कि ऐसा जीवन जीना है आगे चल के न हो कि भी हमने कोई गलत निर्णय ले लिया।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो काफी करीब 2 साल तक मैंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया तो एक बात, बहुत सारी बातें यहाँ इससे संबंधित जो बात है वो मुझे ये लगा कि भी इनका जो बहुत ही अच्छा काम है वह यह है कि भी छोटे से छोटे व्यक्ति में यह सम्मान जगा देते हैं। हमने देखा भी कहीं बंबई में पहली बार आते हैं तो नहीं झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले हैं कि भी शराब पी के आए हैं, कपड़े भी शायद 5 दिन से धोए नहीं होंगे, शरीर से भी बदबू आ रही है, अच्छा भी नहीं लगता कि उनसे बात करें हम। लेकिन जब 10-15 दिन वो आने लगते हैं, इस ज्ञान को सुनते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो शराब छूट जाती है, बल कपड़े सिंपल ही है लेकिन धुलाई करके अच्छे से स्नान करके आए हैं, ऐसा उल्टा अच्छा लगता है कि इनके पास बैठ करके हम भी ध्यान करें।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये बहुत बड़ी बात है,
बहुत बड़ी,
और वो इसीलिए रिजल्ट आता है कि भी उनमें स्वमान जगाया जाता है। राजयोग में ये समझाया जाता है कि भी आप देव तुल्य हो, नर ऐसे कर्म करे जो नारायण के समान बने, नारी ऐसे कर्म करे जो श्री लक्ष्मी के समान बने। तो ये जो भावना उनमें पैदा होती है उससे उनका स्वमान जाग जाता है।
बिल्कुल।
तो मैं समझता हूँ ये जो फ्री रखा गया है वो सबसे अच्छी बात। मेरे फादर थे, कि जो इतना नहीं आते थे, माँ आती थी तो माँ उनको ले आती थी जबरदस्ती कि चलो सेंटर पे, तो पीछे पीछे आ जाते थे लेकिन वो देखते थे। तो ये कहते थे कि भी क्योंकि आपका ये फ्री है इसलिए ज्यादा लोग इसमें जुट रहे हैं, और अल्टीमेटली जब उन्हें फायदा होता है तो शायद आप फीस लेते हैं ना, उससे भी आपको 5 गुना ज्यादा सहयोग देते हैं
जी,
है ना, अपना सब कुछ इस कार्य के पीछे लगा देते हैं। और इसीलिए देखो तो ब्रह्मा कुमारीज का जो डेवलपमेंट भी है, इतना डेवलपमेंट हुआ कि आज करीब 100 से ज्यादा देशों में इसका कार्य चल रहा है
जी।
और छोटे छोटे शहरों में भी सिस्टमेटिक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सेंटर्स है, कि जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम है कि हम स्व की पहचान करा रहे हैं सभी को और शिक्षा दे रहे हैं अध्यात्म की, परमात्मा से मिलाने की, लेकिन कोई फीस नहीं है। थोड़ा सा और मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर गिरीश, आपने बताया कि 7 डेज का एक फाउंडेशन कोर्स होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें।
ये जो फाउंडेशन कोर्स है
जी,
कि जिसमें योग का भी जो बेसिस है वो बताया जाता है कि भी ध्यान करना हो, जैसे 5 शब्द इम्पोर्टेंट है, वो 5 शब्द है इंटरनलाइज, दूसरा है चैनलाइज, थर्ड इज विजुअलाइज, फोर्थ इज डिविनाइज एंड फिफ्थ इज
रियलाइज,
तो इसके बारे में समझाया जाता है। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चैनलाइज कहाँ करना है,
बिल्कुल
वो चैनलाइज करने के लिए आत्मचिंतन में चैनलाइज करना है, परमात्म चिंतन में चैनलाइज करना है, परंतु फिर उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए
जी।
जब ज्ञान होगा तब हम चैनलाइज कर सकेंगे, जैसे कोई भी विषय के बारे में
जी।
उदाहरण के रूप में भी दवाइयों का मुझे चिंतन करना है तो दवाइयों का नॉलेज चाहिए, जब पूरा नॉलेज होगा तो मैं चिंतन कर सकता हूँ। तो ऐसे ही परमात्मा का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब परमात्मा से डायरेक्ट शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं कई बार मेरे प्रवचनों में पूछता हूँ कि पहले बताओ भगवान कितने हैं, तुमने देखा है कि भी कई बार ऑडियंस इतना रिसेप्टिव नहीं होता है।
अच्छा
नहीं? थोड़े दिन पहले मैं लखनऊ में था तो ऑडियंस जवाब नहीं देता था, पहले सुन रहे थे जवाब नहीं देते थे, जब ये पूछा ना भगवान कितने, सबने कहा एक है,
एक है,
कोई भी ये नहीं कहेगा कि भगवान 5 है या 10 है।
बिल्कुल,
तो जब हम सब ये कहते कि भी भगवान एक है तो एक का परिचय होना चाहिए
जी।
नहीं, आज जिस रीति से जो बातें चल रही है उसमें तो ये लगता है कि शायद बहुत सारे भगवान है ना, एक गुरु भी है, उसके थोड़े भी 5,000 भी शिष्य हो जाए वो कहने लगता है मैं भगवान हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल,
तो इसलिए लोग मुंझे हुए हैं, तो वह सही परिचय प्राप्त होना चाहिए, कि जो परिचय दिया जाता है ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान दिया जाता है।
ओके।
क्योंकि नहीं, समय को पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है
जी, बिल्कुल।
नहीं, जैसे एग्जाम के दिन होते हैं तो बच्चे रात दिन पढ़ते हैं,
बिल्कुल,
एग्जाम से 3 महीना पहले कहो तो आधा घंटा भी एकाग्र नहीं कर पाते। तो ऐसे ही वर्तमान ये काल चक्र में कौन सा समय चल रहा है वह समझ में आ जाए तो भी ध्यान लगाना बड़ा सरल है। तो प्रॉपरली अच्छी तरह से कोर्स 7 दिन का तैयार किया गया है, जिसमें ज्ञान मिलता है, ध्यान की विधि भी हम सीखते हैं और प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, कि जिससे सचमुच एक ज्ञान योग की पूरी समझ मिल जाती है, फिर हम अपने आप भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। या तो और एक जो यूनिकनेस ब्रह्मा कुमारीज की है कि भी पूरी मेहनत करके छोटे छोटे शहरों में भी सेवा केंद्र निर्माण किए गए ताकि वहां पर लोग रोज जाके ध्यान कर सके,
सभी इसका लाभ उठा सके।
हाँ, क्योंकि घर में करना मुश्किल है, आपने एक बार सीख भी लिया सब जो 10-15 दिन करेंगे, लेकिन फिर कोई 2-3 दिन तकलीफ आई तो पूरा भूल जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल,
परंतु ये जो सेवा केंद्र का फायदा है, भले उसको निर्माण करने में उसके संचालन में बहुत मेहनत है, परंतु फिर भी जो भी 200-300 लोग उस छोटे शहर से भी नियमित ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्थान बन जाता है, जो वातावरण भी मदद करता है
जी।
और हमारे में नियमितता आ जाती है, एक सिर्फ लक्ष्य भी रख ले कि भी दिन में एक बार वहां पर जाना है, तो वह भी आपकी नियमितता को आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है।
तो कोई भी, हर छोटे छोटे शहर में ऐसे सेवा केंद्र हैं, सेंटर हैं, जहां पर हम फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं, हम निरंतर रेगुलर ध्यान लगा सकते हैं। आपने बताया फाउंडेशन कोर्स होता है, ये फाउंडेशन कोर्स क्या पर्टिकुलर टाइम पर चलाया जाता है किस साल में, इस महीने में फाउंडेशन कोर्स होगा, या ये कभी भी चलता है?
अधिकतर देखो तो अधिकतर सेवा केंद्र में ये 1-to-1 कराया जाता है, एक एक व्यक्ति को, क्योंकि भी नहीं, हरेक की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उनके अपने प्रश्न है, समस्याएं हैं, कि जिसके कारण एक एक व्यक्ति को कराया जाता है। कहीं जो बड़े सेवा केंद्र है जहां पर साथ में भी 10-20 लोगों को कराया जाता है, जैसे जहां पर मैं बॉम्बे बोरीवली में रहता हूं, वहां हर मंडे को हम यह कोर्स शुरू करते हैं।
हर मंडे
मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में 3 टाइम होते हैं। वो फिक्स टाइम पर, एक वीक में जितने भी जिज्ञासु आते हैं, वह मंडे को छोटे छोटे ग्रुप में, 5 के 10 के ग्रुप में, हर मंडे से यह कोर्स शुरू होता है। तो जब भी अगर हम संपर्क करें तो उस सेवा केंद्र की जो सिस्टम है उसके अनुसार सहज ही यह कोर्स को किया जा सकता है। और एक बात है कि जो कहीं कहते हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसे तो एक बहाना है, टाइम तो हमारे पास है ही है, फिर भी कोई कहे कि टाइम नहीं है, तो माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, कि जहां पर भी समय प्रति समय ऐसे राजयोग के भी कोर्सेस होते, जिसको राजयोग शिविर कहा गया है, साथ साथ जो हमारे प्रोफेशन है उस अनुसार 17 विंग्स बनाई गई है। जैसे कि भी यूथ विंग, वीमेन डेवलपमेंट विंग, ऐसे अलग अलग प्रोफेशन वाइज भी, कि भी साइंटिस्ट विंग, जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं उनकी विंग, तो विंग वाइज भी सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसमें भी हम हिस्सा ले सकते हैं। और उसका एडवांटेज एक यह है कि हमारे प्रोफेशन के अनुरूप ऑलमोस्ट 75-80% डिस्कशन होता है। जब अभी जुलाई में एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, कि जब उस प्रकार का सारा डिस्कशन होगा और साथ साथ में मेडिटेशन सीखने का भी मौका मिलेगा।
बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही अच्छा कोर्स है और मुझे बहुत टेम्पटेशन हो रही है, मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं इसको ज्वाइन करूँ। डॉक्टर गिरीश, हमने बहुत से विषयों पर बातचीत की, हमने चर्चा की कि किस तरह से हम अपने आत्मशक्ति को पहचान सकते हैं, किस तरह से स्वयं का विकास कर सकते हैं, किस तरह से हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके, गोल सेट करके, निरंतर उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए, उन्हें निखारते हुए, अस्तित्व को तलाशने, तराशने और विकसित करने की हमारी ये कोशिश रही है हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू। और आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने अपने सुंदर विचार बड़ी खूबसूरती से हमारे दर्शकों के सामने रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे भी काफी इंसाइट मिली, इंटरनल प्रेरणा मिली कि और भी हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करें।
जी, थैंक यू, धन्यवाद।